हरे कृष्ण। आज के इस एकादशी के अठारह फरवरी के एकादशी के दिन आप सबका स्वागत है शाम को। और आज जया एकादशी है और कल वराहा द्वादशी है। चलो, प्रभुपाद जी जब यहाँ से निकले थे तो उसके पहले बहुत सारे सन्यासी गौड़िया मठ के वहाँ पर गए थे प्रयास करने के लिए, हाँ, प्रचार करने के लिए। लेकिन सब लोग जो है वो अयशस्वी होकर लौट के आए, उनको यश प्राप्त नहीं हुआ। और जब उन्होंने सुना कि भक्ति विदान स्वामी भी जा रहे हैं तो उन्होंने उनको चेतावनी दिया कि वहाँ पर आपको इतना सख्त रूप में चलाना बहुत मुश्किल है। आप कहेंगे कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, नॉन वेज नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, तो कोई नहीं फॉलो करेगा। आपको भी वो चमचा और काटा होता है ना, उससे खाने को सीखना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ये हमारे तरीकों को जानते हैं। बहुत उनको सुझाव दिया गया था कि नहीं होगा आपका, आप बेकार में टाइम पास मत करो, क्योंकि आप बूढ़े हो वैसे तो, वहाँ के लोग इतने पतित हैं कि वो इसके बिना रह ही नहीं सकते। एक ऐसा ही प्रोफेसर आया था प्रभुपाद जी के पास, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आप फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बना दो। ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना होता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको व्यभिचार छोड़ देना होगा, किसी भी स्त्री के साथ विवाह के बिना आपको संबंध नहीं करना है, एक ही स्त्री विवाह करने के बाद बस, मांसाहार नहीं करना है, लहसुन प्याज अंडा मछली मशरूम कुछ खाना नहीं आपको, फिर आपको शराब दारू डिगरेट वो क्या LSD हेरोइन अफीम गांजा चरस ये सब नहीं करना है, चाय कॉफ़ी तक नहीं पीना है, और आपको किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है। वो जुआ जो है ना वहाँ पर एक ऐसा मनोरंजन है, तो जाते हैं जुआ खेल के आते हैं, किसी भी चीज़ पर दाव लगाते हैं और खेलते रहते हैं। आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, और ऊपर 2 घंटा रोज़ 16 माला जप करना है, और फिर ब्राह्मण बनने के लिए आपको शास्त्र पढ़ना होगा, बहुत सारे भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ईशा उपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर आप जाकर ब्राह्मण बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, इसमें से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एक चीज़ भी नहीं कर सकता, तो फिर आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। जैसे कि किसी ने मुझे कहा कि प्रभु जी जब आप वो यज्ञ करते हो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी करना है उसको, तो मैंने कहा उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा लेनी पड़ेगी, तो बोलते फिर नहीं करना है मुझे। लोगों को ना मेहनत किए बिना उसका फल चाहिए होता है, एनीथिंग, उनको मिस यूनिवर्स उसकी पत्नी के रूप में चाहिए, लेकिन उसको उसके योग्य नहीं बनना है, उसको बस चाहिए, दैट्स ऑल। बिना काम की नौकरी चाहिए उनको, बिना काम की ये पगार चाहिए, अच्छा, हर लोगों की यही अवस्था है। तो प्रभुपाद जी ने इतना सब सुनने के बाद भी वो एकदम स्ट्रिक्ट रहे, सख्त रहे, और आज भी आप देखेंगे, हाँ देखो, आज हम लोग गोवर्धन में गए थे, हाँ, और गोवर्धन में हमने एकादशी का व्रत किया था, उधर एकादशी का प्रसाद था, तो उसमें 11 लोग जर्मनी से आए थे, हरे कृष्णा के भक्त हैं वो, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ आपके साथ हम प्रसाद ले सकते हैं क्या, हम लोग पेमेंट करेंगे उसका, हम लोग को प्रसाद चाहिए, तो उन्होंने कहा ले सकते हो, कितने लोग हो आप? 11 लोग हैं, तो उन्होंने 900 रुपये ला के दिए 9 लोगों के। उन्होंने कहा दोनों का क्या, 2 आदमी का क्या हुआ? वो कहते हैं उनका निर्जला उपवास है, जर्मनी के लोग बोल रहे हैं कि हमारा निर्जला उपवास है, आज हम लोग कल तक पानी नहीं पियेंगे, और हम लोग भारतीय लोग है अच्छी तरह से बस फिश, बड़ा फिश खाया, फ्रूट सलाद और क्या खीर खाई, बहुत बढ़िया, पकौड़े 2 प्रकार के खाए, सामा के चावल, गीली सब्जी खाई, बहुत बढ़िया, एकादशी दुप्पट खासी। हमने कहा इनको अभी थोड़ा सीढ़ियों को चढ़ाना पड़ेगा, 2-2 सीढ़ियाँ हमने चढ़ाई उनको ऊपर दर्शन करने के लिए। तो देखो कैसे स्थिति में थे लोग और कैसे स्थिति में प्रभुपाद जी ने उनको लाया, और ये लोग तो प्रभुपाद को देखा भी नहीं, ये तो उसके बाद की पीढ़ी है, ये तो यहाँ पर तो कभी हमारा भी प्रभुपाद का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी का जो शिक्षा थी वो इतनी पावरफुल थी। हाँ, वो कहते थे प्यूरिटी इज़ द फोर्स, मतलब हृदय की शुद्धि जो होती ना वो एक शक्ति होती है हृदय की शुद्धि। जो व्यक्ति प्रामाणिक होता है ना हृदय से, मतलब ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, सरल हृदय, शुद्ध हृदय, उसकी उसके कहने में बहुत शक्ति होती है। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ सुना सब लोगों का, लेकिन बताया वही जो उनको बताना था, और सब लोगों ने धीरे धीरे करके उन्होंने जो कहा उसको फॉलो किया। लोग कहते थे कि अरे ये हरे कृष्ण वाले बेडशीट क्यों पहनते हैं, हम लोग बेडशीट बिस्तर पर डालते हैं, ये लोग उसको पहनते हैं, ऐसे कैसे है कल्चर इनका, ऐसे कंडीशन है, ये सर पे क्या लगा रहे दोनों लाइन, तो हमने कभी सुना नहीं इसके। बड़ी विशेष बात मुझे लगती है हमेशा कि चलो आदमियों को उन्होंने धोती पहनना सिखा दिया, जैसे मैंने भी कई लोगों को धोती पहनना सिखाया है, मतलब एक्चुअली बच्चों को कैसे पहना था वैसे पहन के उनको सिखाया, इतना लेना होता है साइड पे, फिर इतना पीछे लेना होता है, फिर आगे इतना लेना होता है, फिर यहाँ पर गांठ मारनी होती है, फिर तिलक भी मैंने लगाया कई लोगों को, गुजरात रापर में भूकंप हुआ था मैंने कई लोगों को तिलक लगाया वहाँ पर। तो पुरुषों तक तो ठीक है, अभी एक सन्यासी 70 साल का व्यक्ति, वो उन्होंने औरतों को ब्लाउज और साड़ी पहनने को कैसे सिखाया होगा, आई स्टिल डोंट नो। बट आज आप देखते हो ना, वृंदावन जाओ आप, उनकी औरतों को देखो वहाँ पर कैसे साड़ी पहन के, हाँ हमारे में से तो केवल 10% स्त्रियाँ जो है वो सर पे पल्लू लेते हैं, और फॉरेन की औरतें 100% सर पे पल्लू लेते हैं, बाल ढक लेते हैं पूरा, बड़ी बिंदी लगाते हैं। हम लोग तो आजकल की शादीशुदा लड़कियाँ भी ऐसा, वो है ना भिंग होता है ना भिंग लेंस, वो लेके ढूंढना पड़ता है कहाँ है वो सौभाग्य का अलंकार, कहाँ है, कहाँ छुपा है, उसको ढूंढना पड़ता है। हाँ शादी के बाद भी, वो भी कलरफुल, लाल तो दूरी छोड़ो, कुमकुम तो अभी आउट ऑफ डेट हो गया है, कुमकुम तो बहुत दूर की बात है, टिकली भी नहीं लगाते। तो कितना प्रभुपाद जी ने हृदय से लोगों को बताया होगा, कितनी करुणा होगी उनके अंदर। और उसके बाद में एक दिन बात आई कि ये स्वामी जी दीक्षा क्या होती है, ये डिसाइपल क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति गुरु महाराज के प्रति अपना जीवन समर्पित करने को तैयार है तो उसको दीक्षा दी जाती है। तो उनको शॉक लग गया, अभी यहाँ तक तो सब ठीक था उनका, तो फॉलो कर रहे थे, सोला माला कर रहे थे, सब कुछ, मतलब सोला माला करने को टाइम लगा उनको, लेकिन धीरे 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 आ गए वो करुणा से, बड़े प्रेम से उनके लिए अपने हाथ से प्रसाद बनाते थे। और फिर दीक्षा की बात, उनको शॉक लगा, उसमें से जब शॉक लगा तो कुछ लोग जेल में थे, उसमें वो पुस्तक वितरण के रस्ते में जाते ना वो, तो उनको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। तो जेल में भी खबर पहुंची कि प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि आपको दीक्षा लेने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ेगा, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, कर नहीं पाएंगे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे आप तो ऑलरेडी कर रहे हो जो वो बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो जो वो कह रहे हो सब कुछ कर रहे हो, आप पहले से ही उनके शिष्य हो, खाली अभी वो एक फॉर्मेलिटी होगी, वो यज्ञ वज्ञ करेंगे, अब नाम वाम देंगे आपको आपका, ऐसे उनको पता भी नहीं चला कि कैसे कैसे प्रभुपाद जी उनको भक्ति के रास्ते पर लेके आए। और उसके बाद में एकादशी व्रत, एक के बाद एक नई नई चीज है ना, हो वो भी, ये भी क्या, अरे दिन भर अच्छी तरह से खा रहे हो, प्रसाद खाते हो, इस्कॉन बुलेट खाते हो, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अभी बोलते हैं कि हर 11वें दिन, हाँ 15 दिन में एक बार आपको सब ग्रेन छोड़ देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं खाना है आपको, बीन्स भी नहीं खाना है, केवल सब्जी और फल खाना है, और रोज से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना है। पहले से 16 माला जो है ना वो बहुत भयंकर बोझ था, उस पर बोलते 25 माला करना है अभी। मैं अभी एक कन्या भक्त को मिला था, वो कह रही थी कि मैं 2-3 साल से ये सब पालन कर रही हूँ, लेकिन 16 माला जो है ना मेरे लिए बहुत थकान देता है, आई गेट एग्जॉस्टेड, पूरी थक जाती हूँ। तो जब मैंने अभी 16 माला से थोड़ा 8 माला कर दिया ना, तो मैं थोड़ा रिलीफ हो गया, मुझे भी थोड़ा मन हल्का लगता है मेरा। नहीं वो बहुत ऑनेस्टी, वो कह रही थी इस फैक्ट, मेरे को बहुत प्रेशर आता है मेरे मन में, आई गेट एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस्ड आउट। लेकिन भारत वर्ष में तो एकादशी का उपवास सब जगह पर है, मायावादियों के अंदर है, वैष्णवों के अंदर है, हाँ हर प्रकार के कर्मकांड में है, सब जगह पर एकादशी का उपवास। और गर्ग संहिता में हमारे तुलसी बाबा ने मुझे दिखाया था, हम जानते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी दिया है कि सब गोपियाँ एक बार राधा रानी के पास पहुँची और उन्होंने कहा कि अरे कैसे आप इतने कृष्ण को वश में रखते हो, हमेशा आपके रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए आपका पीछा नहीं छोड़ते हो, आपके पीछे हमेशा पागल रहते हैं, क्या करती क्या हो तुम। तो उन्होंने सभी गोपियों को लेकर समझाया कि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, और 26 एकादशी का पूरा विस्तार के विस्तार में वर्णन दिया गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। हाँ बाबा ठीक है ना, गर्ग संहिता में दिया ना पूरा 26 एकादशी का नाम के साथ में व्रत पूरा डिटेल में समझाया, मतलब मैं ये करती हूँ इसलिए कृष्ण मेरे वश में। तब से सब गोपियों ने एकादशी का व्रत करना शुरू किया। तो एकादशी व्रत जो है ना, बहुत जो भक्ति करना चाहता है उनके लिए एकादशी व्रत बहुत आवश्यक है। उस दिन हमारी चेतना वो उसको क्या कहते हैं कॉस्मिक, यानी कि कैसा कहते हैं, व्हाट इज कॉस्मिक, स्पिरिचुअल हाँ जो बोल सकते हैं अंतराल में, उसमें हमारी चेतना भगवान की चेतना से बहुत पास रहती। जैसे आप देख जानते ना कि गर्मी के मौसम में हम सूरज के बहुत पास में रहते हैं इसलिए हमको बहुत गर्मी लगती, सर्दी में हमारे जो देश है वो सूरज से दूर जाता तो हमको ठंड लगती। उसी तरह से हर महीने के 11वें दिन हमारी चेतना दिव्य चेतना से बहुत पास में रहती, उसका लाभ उठाने के लिए हम लोग ये उपवास करते हैं। क्या होता है खाने से, जब हम अनाज खाते हैं तो क्या होता है, क्यों नहीं खाना चाहिए, जब अनाज खाते हैं तो विकार उत्पन्न होते हैं, जितने भी धान्य हम खाते हैं उसमें से बहुत प्रकार की भौतिक इच्छाएं पैदा होती हैं। वो पोषण करना जरूरी है शरीर का, मसल्स एंड ऑल द थिंग्स, बट फिर भी शरीर का पोषण करते करते वो चीज़ हमारे आत्मा में भी बहुत सारी इच्छाएं पैदा करती है, इसलिए उसको इस दिन नहीं खाते। और क्या होता है, जब हम धान्य खाते हैं तो उनको हजम करने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब देखो आप एकादशी में खाना खाएंगे ना तो पता ही नहीं कुछ खाया नहीं खाया, इतना बड़ा फीस्ट खाया, 2 घंटे में लगा कुछ किधर गया, वो ऐसा लगा कुछ और लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम शक्ति लगती है उसको हजम करने के लिए, पचन के लिए बहुत कम शक्ति में उसका पचन हो जाता है। मतलब खाना खाने के बाद में क्या होता है, सब लोगों को नींद आती है। जब धान्य नहीं खाते हैं तो एकादशी का प्रसाद खाने के बाद भी हम लोग एकदम चुस्त रहते हैं, सतर्क रहते हैं, हमारी चेतना जो है वो डल नहीं हो जाती। ताकि हम क्या करें, सतर्क रहने के बाद में करना क्या है, लोग सोचते हैं कि उपवास मतलब केवल ये छोड़ना बस, दैट्स इट, कुछ ये कुछ चीज़ें खाने के छोड़ देना है, इसको उपवास समझते हैं। लेकिन उपवास का अर्थ ये नहीं है, उपवास का अर्थ है भगवान के पास रहना, उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना, भगवान के नज़दीक रहना जितना हो सके उतना, उसको उपवास कहते हैं। कुछ खाने की चीज छोड़ना इसको उपवास नहीं कहते हैं, उसको लंघन कहते हैं। टेक्निकली आयुर्वेद में आप पूछेंगे तो लंघन मतलब कुछ छोड़ देना, अभी आपको शायद बहुत गैस हो रहा है तो आप आलू बैंगन नहीं खाएंगे, उसको लंघन कहते हैं। आपको हार्ट की तकलीफ है तो आप तला हुआ चीज़ नहीं खाएंगे, शक्कर की बीमारी तो मीठा नहीं खाएंगे, उसको लंघन कहते हैं, उसको उपवास नहीं कहते हैं। उपवास उसके लिए करते हैं कि जो करने से, कुछ पदार्थ छोड़ने से जो शक्ति हमारी बच जाएगी पाचन क्रिया में, वो हमको भगवान के नाम के जप में लगानी है। सतर्कता जो हमारी मिल रही है हमको वो भगवान के नाम में लगानी है। तो 25 माला करना है, कोई 30 करते हैं, कोई 32 करते हैं। तो हमको, हम लोगों को हर चीज़ का जो सार है ना वो समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज़ हम भारी भारी दृष्टि से करना चाहते हैं, हमेशा हमको शो करना अच्छा लगता है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बड़ा मोटा तिलक, बहुत स्ट्रेट तिलक लगा के घूम रहे हैं, लेकिन टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, हाँ कभी कैसीनो में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम भक्त हैं। लेकिन जो मोह माया जो है वो छूटती नहीं है, तो हम लोगों को उनका सार समझना जरूरी है। तो एकादशी का व्रत हम करते हैं ताकि हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, हाँ 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 स्पेशल सेंसेस एंड 5 वर्किंग सेंसेस। किसको पता है, जो ज्ञानेन्द्रिय है उसको कहा गया कि हमारे आंखें हैं, हमारे नाक हैं, हमारी जिह्वा है, हाँ सुन रहे आप लोग, आंखें कान जिह्वा नाक और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय कहा गया उसको, जिसके माध्यम से हमको इस विश्व के प्रति ज्ञान मालूम होता है। जैसे हाथ लगाएगी तो पता चलता कि यार ठंडा है, गर्मी होगी तो पता चलेगा बहुत गर्मी है, अभी कपड़ा निकालना चाहिए। तो त्वचा अपना कार्य करती है, कान में से बोलते कि बहुत भी शादी चल रही है, बहुत इतना आवाज़ कान फट रहा है मेरा, सर दुख रहा है, तो दुनिया में क्या चल रहा है उसका ज्ञान जो है वो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से, जो हम पढ़ते भी है ना वो इनमें से ही कुछ इंद्रियों को यूज़ करके हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं उसको। और 5 होते हैं वर्किंग मतलब कर्मेंद्रिय, वो कौन से होते हैं, हाथ पैर और स्वर यंत्र, और जननेन्द्रिय सेक्स ऑर्गन, और क्या प्रभु जी? हाँ त्वचा तो ज्ञानेन्द्रिय हो गया ना प्रभु जी, एनस गुदा, यहाँ से हम विष्टा बाहर फेंकते हैं, एनस गुदा स्वर यंत्र जिसे हम बोलते हैं, हाथ पैर और बताया ना पांच, अभी दोबारा बोलेंगे, बोलो हाथ पैर स्वर यंत्र जननेन्द्रिय और गुदा, ये पांच हुए ना, तो ये पांच कर्मेंद्रिय जिसमें से हम लोग कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं तो हजम करना पड़ता है, बोलना है तो स्वर यंत्र का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे यंत्र जो है, सारे जो इंद्रिय हैं, ये हमको या तो दुनियादारी में फंसा सकते हैं या तो हमको ये दुनियादारी से हटने के लिए मदद कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं। आप कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर वो चीज़ आपको भगवान को मिलने से सहायता करेगी या भगना से भगवान से दूर कर देगी। जैसे पैसा फॉर एग्जाम्पल, पैसा अच्छा है कि बुरा है बताओ? हाँ हाँ, लेकिन लगता कैसे आप लोगों को? सच में बोलो, मुझे तो अच्छा लगता है बहुत, जब भी ज़्यादा पैसा हाथ में आता है बड़ा खुश हो जाता हूँ मैं, बड़ा मज़ा आता है मुझको, वाह। एक बार मतलब जेब में पैसा आ गया ना, इधर भी थोड़ा है इधर भी थोड़ा है, तो सब मन उल्लसित रहता है, कुछ शक्ति आ रही है मेरे पास। लेकिन वो पैसा अगर हमने इंद्रिय भोग के लिए लगाया तो वो हमें विनाश की ओर ले जाता है, झगड़े पैदा करता है, तंटा वाद विवाद पैदा करता है, भोगवाद पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, अपने लोग दूर चले जाते हैं, अपने पराए हो जाते हैं, है ना, सोच सकते हो। और वही पैसा अगर आपने अपने को जितना ज़रूरत है उतना रखा, जो भी ज़रूरत है प्रामाणिकता से, कपड़े खाना पीना रहना जो भी चाहिए आपको सुविधा, वो सब लेने के बाद में अगर आपने उसको भगवान की सेवा में लगाया तो आप पैसे के गलत प्रभाव से मुक्त रहते हो। ज़रूरत से ज़्यादा जब पैसा किसी के पास होता है ना तो वो मति को भ्रष्ट कर देता है। मैं जब सऊदी अरब में था ना तो मुझे कर्ज था मेरे ऊपर, तो मैंने तय किया था कि भी जितना मुझे चार हफ्ते के लिए चाहिए पैसा, चार हफ्ते के लिए मुझे रहना है, खाना पीना खाना है, उतना ही मैं रखता था, एक भी रियाल एक्स्ट्रा रखता नहीं था, सारा ऊपर का तनख्वाह जो है घर में भेजता था, तुरंत ट्रांसफ़र करता था लोन पेमेंट करने के लिए। लेकिन जब आने का समय आया वहाँ से, जब कर्जा चुकता हुआ, तो मैंने पहली बार कुछ एक्स्ट्रा पैसा जेब में रखा, मतलब भेजा नहीं उसको। मुझे लगा कि साउंड सिस्टम खरीदना चाहिए, टीवी खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, वो खरीदना चाहिए। तो तब मैं जब रोज जाता था मॉल में तो केवल 50 रियाल में जितना सब आता था सामान उतना ही खरीदता था, बस जो भी मिलेगा उसके अंदर, वो नहीं परवड़ता है तो आउट, जो 50 रियाल में हफ्ते भर के लिए जो ज़रूरी है वही लेता था मैं। लेकिन जब लोन ख़त्म हो गया और पैसा जेब में था एक्स्ट्रा, तो मुझे लगा कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाना चाहिए, मुझे लगा कि ये जूस पीना चाहिए, वो मैंने ये 2 साल में कभी पिया नहीं, रोज़ देखता था लेकिन कभी लिया नहीं उसको। पैसा बोलता है, हाँ मनी स्पीक्स, करो इसको करो। पैसा बहुत रहेगा तो आप औरतों पर रुबाब जमाते हो, वॉन्ट टू इम्प्रेस अपॉन लेडीज़, इम्प्रेस अपॉन मैन कि आप कितने महान हो। सब सम्मान आजकल पैसे वालों को मिलता है, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, पापी हो, पैसे वाले का बड़ा रुबाब होता है ना। तो उसी तरह से हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज़ अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाती है, अच्छी प्रगति कर देती है, और इंद्रिय भोग के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको सर्वनाश कर देती है। तो हमारे इंद्रियों को उस दिन हम क्या करते हैं, एक दिन के लिए बहुत भारी अन्न जो होता है धान्य वो नहीं खाते हैं, फलाहार करते हैं, थोड़ा सा हल्का आहार करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, और उस दिन को हम भगवान के चेतना से पास में है उसका लाभ देना चाहते हैं। तो एकादशी दश इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया हुआ दिन है वो एकादशी, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय उस पर विजय प्राप्त करके उसको ज़रा दबा के भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए वो एकादशी का दिन दिया है। 26 एकादशी साथ में हाल में आती, और एकादशी वैष्णव बनकर एकादशी न करना ये बहुत बड़ी गलती है, और वैष्णव बनने के बाद एकादशी करना ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है, बहुत ही लाभदायक। उसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, बुरा भला नहीं बोलना चाहिए किसी को, झगड़ा नहीं करना चाहिए भगवान के विषय में। जैसे कि होता है रमज़ान मुसलमानों का, वो किसी से गुस्सा नहीं करते रमज़ान में, बाकी समय पर आतंक करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं अच्छे जो धर्म को पालन करने वाले हैं वो सोचते हैं कि ये महीने में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, उस मन को शांत रखना है, मन को उद्विग्न नहीं करना है, मन को भगवान में रखना है, 4 वक्त के बदले में 5 बार प्रार्थना करनी है, बिना भूले ही करनी है, हमेशा उपवास रख के भगवान के ही चिंतन में रहना है, ये व्रत दिया गया था। तो ये उपवास जो है ना वो क्रिश्चियन धर्म में भी है, मदर मेरी का व्रत है, कई लोगों का व्रत है, फिर मुसलमान धर्म में रमज़ान है, 30 दिन तक व्रत करते हैं। जब मैं सऊदी में था तो मैंने 25 रोज़ा किया था, वैसे भी वहाँ पर किसी के सामने आप खा नहीं सकते हो, अगर आपका भी रोज़ा नहीं है लेकिन अगर मुसलमान सामने काम कर रहा है तो उसके सामने आप पानी नहीं पी सकते हो, कुछ खा नहीं सकते हो, तो फल वल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं खा सकते। तो अगर ऐसे रहना है तो क्यों नहीं रोज़ा ही किया जाए। तो मैंने फिर मोहम्मद ने जैसा बताया था वैसे पूरा पढ़ लिया उसको, एकदम हूबहू उसको वर्ड टू वर्ड मैंने उसको फॉलो किया। मतलब क्या, शाम को जब उपवास समय आता है छोड़ने का तो संतरे का जूस पीना होता है, फिर 1 घंटा बाद में थोड़ा सा खाना होता है, थोड़ा सा, जस्ट टू मेंटेन योर सेल्फ, और रात भर उसके बाद में प्रार्थना करनी है आपको, सोना भी नहीं है, जस्ट कीप चैंटिंग ऑल द टाइम। और वो लोग जो होता है इफ्तार, मतलब छोड़ने का समय आता है, तो वो तली हुई मिर्ची खाते हैं नंबर वन, उसके बाद में ये धनाधन इतना खाते हैं रात भर, तो हॉस्पिटल में फिर एक्यूट एब्डोमेन के केसेस आते हैं रात को, और इन द एंड ऑफ द मंथ सब लोगों के वजन बढ़े हुए दिखाई देते हैं, और शॉपिंग मॉल में सारे महीनों से अधिक, सबसे अधिक परचेसिंग होता है खाने पीने की चीज़ों का, रात भर खाते हैं उसको इतना। सुबह भी जो फजर की प्रार्थना होती है उसमें, उसके पहले इतना खा लेते हैं कि 4-5 घंटे तो भूख लगनी नहीं चाहिए, फिर सो जाते हैं, फिर 10-11 को उठते हैं तो भूख ही नहीं है, फिर कुछ समय के लिए उपवास करते हैं, फिर 4-5 बजे सूर्यास्त हो गया, उधर तो 4-5 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है, फिर चालू। तो कहने का मतलब क्या, मैं किसी पर निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि लोगों को जब किसी भी विधि का सार और उद्देश्य पता नहीं है तो उसकी अवस्था ऐसे हो जाती है। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग नहीं है जो कुछ भी, कोई भी लोग ऐसे फॉलो नहीं करते, कुछ लोग हैं जो परफेक्टली फॉलो करते हैं, परफेक्टली। हमारे यहाँ पर इतने भक्त लोग हैं बोरीवली में, वो पहले एकादशी में 64 माला करने का प्लानिंग करते थे, 4:30 बजे एकत्र होते थे किसी के घर में और 2 बजे तक 64 माला करते थे, फिर उनको लगा कि अब 128 माला करनी चाहिए, तो उन्होंने 128 माला करना शुरू किया, फिर उनके मन में आया कि 192 माला करना चाहिए, तो उन्होंने एकादशी को हरिदास ठाकुर के डिसअपेरेंस डे के दिन या अपेरेंस में एक दिन 192 माला जप किया कि भाई हरिदास ठाकुर को क्या लगता होगा भगवान का 192 माला जप करने के बाद में क्या उसकी चेतना होगी, उसका अनुभव करने के लिए क्या होता है। उन्होंने कहा कि 128 के बाद भी ऐसा लगता है कि क्यों हम जी रहे दुनिया में, कोई इच्छा ही नहीं ना खाने की ना पीने की ना परिवार की, ऐसा आदमी बहुत एकदम ऊपर के सर पर चला जाता है, भगवत चेतना में चला जाता है। तो एकादशी का धन ही उसके लिए है, अधिक से अधिक जप करके भगवान के नज़दीक जाने के लिए, इसलिए हम भी उसको फॉलो करते हैं। और धान्य नहीं खाते हैं और बीन्स नहीं खाते, मतलब वो ना पापड़ी वो सब वो चीज़ें नहीं खाते, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, और जितना हो सके उतना कम खाते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मुझे पहली बार जब मैं हरे कृष्ण में आया तो कैसा है ना, हमें खाने पीने की बहुत आदत थी, बहुत ज़्यादा, मतलब 2-2 प्लेट के कम हम कभी खाते नहीं थे, शाकाहारी भी, अभी भक्त बनने के बाद भी किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो 2 प्लेट रख के फिर खाना है उसको एकदम प्रेम से, अभी कोई आइटम मिक्स नहीं करना है, अगर 4-5 आइटम होंगे 2 प्लेट में उसको डिवाइड करना है, शांति से खाना है, इधर का उधर मिक्स नहीं होना चाहिए, 10 आइटम होंगे तो फिर और 2-3 वाटी लेना है उसको, इत्मीनान से खाना है, बड़ो प्रेम से, इसको भगवान का प्रसाद है ये, साक्षात भगवान आपके सामने आए, उसका ऑनर करना चाहिए, ऐसे हमारे भाव थे। पेट भर खाने का बताया गया था कि देखो, मैंने कहा था कि मुझे मैं इतना खाने की आदत है, मैं ये व्रत पर रखना मुश्किल है मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा एडवाइस दिया गया था कि आप लोग एकादशी का जो भोजन है वो भर पेट खाओ, फिर धीरे धीरे आपको नियंत्रण आएगा। तो हमने शुरुआत में जब मैं पहले एकादशी किया था ना, तो मैं मेरे रूम में बिस्तर में था पूरा दिन, आई वॉज इन द बेड बिकॉज ऑफ वीकनेस, आई कुड नॉट गेट आउट, वो चादर ओढ़ के मैं रूम पे सोया रहा, वो सब खा के, हाँ मतलब एकादशी का पर दबा के खा के फिर भी मैं इतना कमजोर हो गया था कि मैं सोया था। आज एकादशी में दौड़ता हूँ मैं, हाँ और बहुत कम खाता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सब लोगों को गाइड किया है, सब प्रकार के लोगों को, अब भीमसेन हमारे जो है ना, इतने भूख लगती थी उनको, अरे वनवास में तो हमेशा बेचारे भूखे रहे 14 साल, 12 और 1 है ना, हमेशा भूखे रहे वो, और करते क्या थे माता पिता उनके, माता कि जितना भी भिक्षा आती थी ना बहुत ज़ोरदार, उसका 2 भाग करते थे, 1 भीम को देते थे और बाकी जो बचा हुआ उसको 5 लोग डिवाइड करते थे, इतनी भूख थी उसको। तो उसको एक बार नारद मुनि ने कहा कि अरे एक तो एकादशी करना चाहिए। बोले नारद मुनि महाराज जी हमारा काम नहीं है प्लीज, ये बाकी आप कुछ भी बोलो। कहाँ कुछ पेड़ को उखाड़ने का तो उखाड़ देंगे उसको, लेकिन उपवास करने का मत बोलना, वो तकलीफ वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि एक उपवास उपवास करना चाहिए आपको, एक उपवास। तो उन्होंने एक उपवास किया सबके ऐसा सुपरविजन में, कुछ हो ना जाए इसको। अगर अगर अभी होते तो हम लोग ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर सब देखते थे उनका भी, क्या हो रहा है उनका, इज ही ऑल राइट। तो वो बेहोश जैसे हो गए एक्चुअली, और वो हस्तिनापुर के आसपास जब वो नदी किनारे ऐसे बेहोश जैसे गिर गए, तो दुर्योधन ने आकर उसको ना वो ऐसा कुछ खिलाया, उसको उसको भेज दिया पानी में। इफ इज एकादशी ओनली, नहीं आई थिंक नॉट एकादशी। तो एनीवेज तो बहुत कष्ट हुआ उनको उस दिन, तो उसको पांडव निर्जला एकादशी कहते हैं। समझा, अब आपके कोई एकादशी चुक गई होगी ना, समझो कोई गलती से किसी ने दिया और झट से खा लिया, आपको पता ही नहीं, भूख लग रही थी, दिया हाथ में तो तुरंत मुँह में डाल दिया, अरे गड़बड़ हो गया। तो ऐसा अगर होता है तो हम लोग एकादशी कंटिन्यू करते हैं, तो उसको आगे तुरंत अच्छा हो गया, अभी टूट गया तो पूरा खा लो, ऐसा नहीं करते, आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। उसके बाद में निर्जला एकादशी के दिन जो है ना, वो गर्मी के मौसम में आता है, उसमें पूरा निर्जला एकादशी करते हैं, बिना पानी पिए। जन्माष्टमी में बिना पानी पिए करते हैं, उसमें इंद्रियों पर बड़ा काबू आता है, मन बहुत शांत हो जाता है, बहुत चेतना चुस्त रहती है उस दिन। तो एकादशी का व्रत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें साल में कुछ चार या पाँच महाद्वादशियाँ आती हैं, जैसे आज कल वराह द्वादशी है, तो वराह द्वादशी के लिए हम आज के दिन एकादशी के दिन जया एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक निर्जला उपवास रखते हैं वराह देव के आविर्भाव के लिए, और फिर दोपहर के बाद में एकादशी का अन्न आप खा सकते हो। फिर कभी और किसी द्वादशी आती है तो फिर उस दिन भी ऐसा करते हैं, एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक निर्जला रखते हैं। ये सब जो है जिह्वा जो है ना, जिह्वेर लालसा ए इति उति धाय शिष्नेर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिह्वा है ना, अगर जब वो कंट्रोल में नहीं रहती है, तो जिह्वा पेट और सेक्स एक लाइन में होता है। जब जिह्वा अनियंत्रित होती है तो पेट भी अनियंत्रित होता है, उसके बाद पेट के नीचे जो है दबा हुआ वो भी बेकाबू हो जाता है। तो जिह्वेर लालसा मतलब जिह्वा जो है उसकी लालसा में जीव इति उति धाय, मतलब यहाँ वहाँ भागता है वो खाने के लिए, उसको कंट्रोल नहीं है, कितना खाया उसको पता नहीं। शिष्नेर परायण मतलब जो सेक्स के विषय में परायण है, उसका मन सेक्स में लगा हुआ है, उसको कभी भी कृष्ण नहीं प्राप्त होते। इसलिए एकादशी का व्रत है कि जिह्वेर लालसा कम हो जाए, शिष्नेर परायण भी परायणता भी कम हो जाए और मन कृष्ण में लगे। तो ये सब धीरे धीरे प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत लगातार जीवन भर इस व्रत को पालन करना पड़ता है। और एकादशी का व्रत जो पालन करता है वो बहुत दिव्य आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त करता है। जैसे हम लोग बरसाने में भी कैंप में हो, कोई लोग करते नहीं हो, सब लोगों को एकादशी मैंने कहा है कि अच्छा एकादशी का प्रसाद बनाओ, लेकिन सबको व्रत कराओ, क्योंकि धाम में बैठे आप लोग, धाम में आकर एकादशी करेंगे जानते अनजानते हुए, कितना लाभ मिलेगा आपको उसका, इतनी कृपा मिलेगी। राधा रानी ने तो कहा, कहते हैं कि कृष्ण की कृपा और कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त होता है एकादशी का व्रत करने से। तो केवल राधा वल्लभ भी लोग हैं ना, वो एकादशी नहीं करते, नहीं तो आज हमारा राधा वल्लभ मंदिर में प्रसाद का मैंने इंतजाम किया था, फिर ध्यान में आया कि आज तो एकादशी है, राधा वल्लभ मंदिर में एकादशी प्रसाद नहीं बनता है, तो हमने कैंसिल कर दिया और उसको कल जाके अर्जेंट में जाकर गोवर्धन में उसका मतलब योजना बना दी, उसकी व्यवस्था कर दी। तो इस तरह से सब लोगों को विनती है कि आप हर एक कार्य के पीछे जो भाव है उसको समझो, हर एक गतिविधि जो हमारे कृष्ण भावना में हम करते हैं उसके पीछे अर्थ है, कोई अर्थहीन चीज़ें नहीं है, क्यों करते हैं पता नहीं, बेकार की बातें हैं ऐसा आपको लगेगा, लेकिन हर विधि जो हम करते हैं, हाँ 64 विधि बताई रूपों गोस्वामी ने, हर विधि के पीछे कुछ तात्पर्य है, कुछ अर्थ है, वो करने से हम भगवान के पास में चले जाते हैं, भगवान का सान्निध्य प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये तो बंद हो गया महेश, तो इसलिए आप लोगों को विनती है, आप लोगों ने उपवास किया ना अच्छी तरह से, तो बिस्किट उड़ नहीं खाया ना, हाँ अच्छा किया हमने। धाम में एकादशी का जो प्रभाव है वो आम तौर से ज़्यादा होता है। तो और किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है किसी को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आज हम गोवर्धन में गए थे, बहुत आनंद आया गोवर्धन में, गिरिराज जी भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, गोपियाँ उनको गौरव करती हैं, तो वहाँ पर हमने आज एकादशी प्रसाद पाया, एकादशी का व्रत रखा, तो निश्चित रूप में भगवान प्रसन्न हो गए होंगे, क्योंकि एकादशी के दिन पे केवल भोजन छोड़ना नहीं है, उसमें अधिक जप करना है, अधिक श्रवण करना है, इंद्रिय भोग के कार्यों को छोड़ देना है, भक्तों का संग करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान के मंदिर में जाना है और वहाँ सब भक्तों के बीच में बैठना है। तो हमारा चेतना की वृद्धि जो रोज़ होती है उससे कई गुना उस दिन प्राप्त होती है, आगे बढ़ती है, इसलिए बड़े उत्साह से। हाँ, हमारे घर में कैसा होता है, घर में नहीं बाहर, अरे प्रभु कल एकादशी है, खा लो खा लो, एक रोटी एक्स्ट्रा खा लो, कल एकादशी प्रभु एकादशी। ये जो धारणा है ना वो गलत धारणा है। एकादशी का दिन ऐसे कहा गया है कि दशमी की रात को बहुत कम खाना चाहिए, वो उल्टा करते हैं कि भाई खाओ खाओ, दो रोटी एक्स्ट्रा खाओ, कल सुबह भूख नहीं लगना चाहिए। तो एकादशी के पहले दशमी की रात को बहुत हल्का खाना चाहिए, ताकि सुबह जब एकादशी को उठेंगे तो पेट में अन्न नहीं रहेगा, आपकी पेट खाली रहेगा। ऐसा नहीं कि हम डकार देके उठेंगे एकादशी को तो पेट में कल के धान्य का, दाल का और सब सब्जी का डकार आ रही है आपको, तो एकादशी व्रत नहीं है वो, तो पेट में ऑलरेडी धान्य है। तो रात को बहुत कम खाते हैं, जल्दी खाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, और द्वादशी के दिन भी सुबह बहुत हल्का खाते हैं पारण करने के लिए। बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी का जो चावल है जगन्नाथपुरी में मिलता है, उसको सुखा कर उसको रोल बनाकर सबको देते हैं, और हम लोग एक दाना मुँह में डालकर पारण करते हैं उसका। उसका भी समय होता है पारण समय, उसके बीच में उसका अनाउंसमेंट होता है, इस भक्त लोग मैसेज भेजते हैं तो उसको उस समय ही पारण करते हैं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ विधि है और श्री कृष्ण भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। सब लोगों को एकादशी को एक दर्द के रूप में देखना नहीं चाहिए, इट्स अ पेन, अभी एक बार दोबारा आ गई, एक पंद्रहवड़े में एक बार दोबारा आ गई, व्हाट अ पेन, व्हेन इट विल एंड, कब पारण होगा। वो निर्जला एकादशी मन में क्या करते हैं, वो रात को ही प्लानिंग करते हैं उसका क्या पीना है सुबह, वो रात को ही उसको बना के ना फ्रिज में भर के रखते हैं, पूरा सोच सोच के बनाते हैं उसको भी कल सुबह उसको 6 बजे पीना है। चार प्रकार के जूस जल के फ्रिज में रखते हैं क्योंकि ठंडा होना चाहिए। और अगर पारण का समय समझो 6:01 से 7:15 है, तो 6:01 होने के बाद तुरंत सब धनाधन पीने लगते हैं। 1 घंटा 15 मिनट कौन रुकेगा, वो विल वेट, पारण का समय होगा अपनी मर्जी से, हमको क्या करना है, हमको तुरंत छोड़ना है। कारण क्या है उसका, कि हमारी चेतना जो है ना हमको पता नहीं एग्जैक्टली उसका पर्पस क्या है। जब हम उसको स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे, हाँ, यू लुक फॉरवर्ड टू द उपवास, लुक फॉरवर्ड टू चैंटिंग, लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग, लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग डिवोटीज, तो पूरा आपको एकादशी का लाभ मिलेगा। एकादशी को दर्द के रूप में नहीं देखना चाहिए, एकादशी को भगवान की कृपा समझकर बड़े उत्साह से पालन करना चाहिए। ठाकुर भक्ति उन्होंने जिसको माधव तिथि बोलते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी, बड़े प्रयास से मैं ये माधव तिथि यानी कि जन्माष्टमी रामनवमी ये जब आविर्भाव दिवस किसी का तिरुभाव दिवस मैं बड़े प्रेम से पालन करता हूँ, ऐसे बोलते हैं, बड़े सिंपल लैंग्वेज, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी, बड़े प्रेम से मैं पालन करता हूँ, क्योंकि वो भक्ति जननी है, भक्ति का उगम उस तिथि में प्राप्त है हमको। तो संतों का संग इसलिए करते हैं कि उसका भाव जो है वो हमको समझना चाहिए, इसलिए हम संतों का संग करते हैं। तो हर एक विधि का भाव समझते हैं, मैकेनिकली कोई विधि को नहीं करते हैं, यज्ञ करते तो क्यों करते हैं, कहीं जा रहे धाम वास करने के लिए उसका पर्पस क्या है, भक्तों की सेवा करनी है उसका पर्पस क्या है, भगवान की सेवा करनी है उसका पर्पस क्या है, श्रवण करने का उद्देश्य क्या है, कीर्तन में क्या करना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए। एक चीज़ करो लेकिन समझ बूझ के करो तो उसकी प्राप्ति बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाती है। अगर आपको अज्ञान के वशा वैसे ही किसी ने बोला हाँ ऐसे कर रहे हैं तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। एक मज़ेदार कहानी है कि किसी ने बोला इसलिए मैंने किया, तो क्या हुआ, एक दुल्हन जो है वो मतलब जो माँ है उसकी बेटे की शादी थी और दुल्हन घर में आई, तो हम लोग हमारे भारत में मालूम है ना वो चावल का एक रखते हैं उसमें माप माप मतलब यानी चावल का ग्लास रखते हैं उसमें चावल डाल के, औरत उसको दुल्हन जो है उसको पैर से गिरा देती, मतलब समृद्धि का लक्षण है वो। तो जब वो दहलीज में उसको ऐसा गिरा रही है तो एक बिल्ली वहाँ से क्रॉस हो जाती, तो सासू क्या करती है मतलब जो बेटे की माँ है वो तुरंत एक टोकरी लेती है और वो बिल्ली को जो है ना उसको बंद करके रखती है। तो दुल्हन जो है वो देखती है कि इनके घर में ये रिवाज है, जब नई दुल्हन आती है तो बिल्ली को बंद करना चाहिए। तो जब उसने पूछा नहीं उसने कि ऐसा क्यों है क्या है, कुछ नहीं, वो देख लिया उसने खाली, बस नोट कर लिया उसको। जब वो मतलब नई नई दुल्हन थी, फिर वो बच्चे हो गए, फिर माँ हो गई, फिर वो जेठानी हो गई, फिर वो बहुत सारा, तब उसकी बच्चे की शादी होने वाली थी, तो बच्चे के बहू जब घर आए तो उसने क्या क्या बिल्ली की व्यवस्था किया, एक बिल्ली का आइटम का एक लिस्ट में रखा, बिल्ली चाहिए भाई, और टोकरी भी ला के रखी, और वो बिल्ली और टोकरी जैसे ही वो अंदर आने लगी तो उसने बिल्ली को सामने लाया और ढक दिया उसको। जब उसकी वो बहू जो थी वो जब सासू बनने का समय आया तो बुद्धिमान थी, उसने पूछा क्या है ये, इसका मतलब पर्पज़ क्या है, तो सासू को पूछा, तब जीवित थी वो, उसने कहा मुझे पता नहीं, मेरे सासू ने मुझे करते हुए देखा था मैंने, इसलिए मैं भी किया। तो सद्भाग्यवश उसकी सासू की सासू भी जीवित थी, बहुत बुढ़ी अवस्था में, उसको पूछा गया कि मैया दादी जी ये क्या है बिल्ली का चक्र, तो कहते कुछ नहीं, जब वो आप आ रही थी ना तभी वो बिल्ली बीच में आई, तो मैं उसको बार बार बीच में नहीं आना चाहिए, मैं उसको ढक दिया, इसमें कोई विधि विधि कुछ नहीं है, आप लोग क्यों करते उसको। तो ये टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है। हाँ पता नहीं वो पेड़ को दोरा क्यों बांधना है, वो शनिवार के दिन उस पेड़ को सात बार प्रदक्षिण क्यों करना है, वट सावित्री में ये करना है, क्यों करना है कुछ पता नहीं है, कड़वा चौथ क्यों करना है, नोबडी नोज, नहीं हमारे घर में रिवाज है, वो सबको करना पड़ता है। इस तरह से कर्म कांड जो है ना वो प्रधान हो जाता है, और हर व्यक्ति कुछ भी कुछ करेगा तो उसका कुछ लाभ चाहता है, तो कर्म कांड को त्याग करके ज्ञान कांड को छोड़ के हमको भक्ति मार्ग में आना चाहिए, हर चीज़ का रहस्य समझकर उसको अपनाना चाहिए, तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा और सार भी पता चलेगा, कोई पूछेगा ऐसा क्यों करते हैं आप, आपको पता होना चाहिए। तो एकादशी के दिन एक राक्षस था मूर नाम का, उसका भगवान का युद्ध हुआ, तो वो क्या किया, बहुत भागा वो, भागते भागते भगवान पीछा कर रहे थे उसका, तो वो मूर राक्षस जो था वो धान्य के खेत में जाके अदृश्य हो गया, मतलब धान्य रूप हो गया वो, ही जस्ट मर्ज्ड इन द क्रॉप, जो धान्य होता है ना फसल उसमें वो गायब हो गया। इसलिए भक्त लोग एकादशी के दिन धान्य नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें राक्षसी प्रवृत्ति होती है, है कारण उसका, एकादशी के दिन राक्षसी प्रवृत्ति धान्य में आ जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए वो धान्य नहीं खाते। मैं देखा आज वो जर्मनी का एक भक्त तो है, तो वो उनको परोस रहे थे, तो वो एक भक्त ने बोला हाँ चावल 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 चावल, तो बड़ा गुस्सा हो गया हो, क्या बात कर रहे हो एकादशी में आपको चावल खिला रहे हो, तो झगड़ा ही होने लगा। तब मैं वहाँ से अचानक वहाँ पहुँच गया, मैंने कहा प्रभु जी ये चावल नहीं है, एकादशी का सामा राइस है, तो कभी फिर भी उसको बहुत देर वो एजिटेटेड था कि हाउ कैन यू फर मी चावल और एकादशी, आपने चावल चावल बोला ना, यू सेड चावल, तो फिर वो कन्फ्यूज हो गया भक्त, तो बोलते हमारे मंदिर में खाते नहीं, आपने लोगों ने वो बना के लाया है आपके मंदिर से, तो मैंने समझाया कि सामा चावल जो होता है वो एकादशी में खाते हैं, उसको कोई परहेज नहीं है, तो फिर वो शांत हो गया। तब देख सकते हैं कि विदेश में लोग कितने स्ट्रिक्ट हैं और हम लोग कितने उसको वो डाइल्यूट करके उसको फॉलो करते रहते हैं, उनको देख के हमको प्रेरणा मिलती है, कितना गलत देश में उनका जन्म हुआ है, इतने सारे पाप होते हैं वहाँ पर, क्या क्या कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या बात करते हैं, कोई आज एक लड़की तो कल दूसरी लड़की, कोई ऐसा नियम ही नहीं है, एवरी वीकेंड न्यू गर्लफ्रेंड न्यू डेटिंग, ऐसे देश में से लोग भगवान के भक्त बने हरे कृष्ण में, और कितना सख्त नियम पालन करते हैं समझ बूझ कर, बहुत परदेश में गए तो भी बहुत ही समझ बूझ के, विदेश में गए तो भी उसको फॉलो करते हैं, हमको उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे, हमारे सारे व्रत जो हमको बताए गए उसको करना चाहिए, संतों के आविर्भाव तेरे भाव के दिवस में भी हमको उपवास करने से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि हम उनके शिक्षा के बारे में चिंतन करते हैं, रामानुजाचार्य मध्वाचार्य जिनका आविर्भाव है उनके बारे में सुनते हैं, उनके जीवन चरित्र सुनते हैं, उनको चिंतन करते हैं। कल आपको मैं वराह द्वादशी की कथा बताऊँगा, पर्पज ही उसका ये है कि उस बहाने हम वराह देव के बारे में सुनेंगे, लीला को सुनेंगे तो हृदय शुद्ध होगा हमारा, इसलिए हर व्रत को कीजिए, व्रत करना भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, और व्रत करने से हमारी आत्मा भगवान की ओर बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाती है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।